नहमिया अध्याय एक। अध्याय एक के पद एक में नहमिया अपना परिचय देता है और अपने भविष्यवाणी का समय भी बताता है कि उसने अर्थशत्र राजा के 20वें वर्ष में सेवकाई आरंभ की थी। इस प्रकार समय के क्रम में देखा जाए तो एस्तर की पुस्तक एज्रा और नहमिया के बीच में आती है। राजा अर्थशत्र रानी एस्तर का दत्तक पुत्र था, अतः दृश्य इस प्रकार है कि वो शूशन राजगढ़ में है और राजा अर्थशत्र राज कर रहा है। उसका भाई हनानी, हम अध्याय सात में पढ़ते हैं कि हनानी वास्तव में नहमिया का भाई था, यरूशलेम को गया और जब वो वहां से लौटा तब नहमिया ने पवित्र शहर की व्यवस्था और अवस्था के बारे में पूछा। नहमाया गुलामी के समय में पैदा हुआ था और गुलामी से पहला दल लौटे हुए करीब 90 वर्ष हो गए थे। 536 ईसा पूर्व राजा कुसरू ने आज्ञा दी कि वे इसराइल को लौटे और मंदिर का पुनर्निर्माण करें। ये वापसी करीब 445 ईसा पूर्व शुरू हुआ। इस तरह करीब 90 वर्षों के बाद कार्य आरंभ हुआ, अर्थात बाबुल की गुलामी में जाने के करीब 160 वर्षों बाद। नहमिया ने यरूशलेम कभी नहीं देखा था, उसने मंदिर भी कभी नहीं देखा था, परंतु अपने मन में वो मंदिर और यरूशलेम की पहचान बनाए हुए था। भजन 137 में गुलामी का गीत है। भजन यूं शुरू होता है, बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े, उसके बीच के मजनू के वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। इस भजन में रोना है। भजन संहिता 137 5 और 6 पद। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दहना हाथ झूठा हो जाए, यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू में चिपट जाए। रुचिपूर्ण बात है कि कैसे परमेश्वर ने हर यहूदी के हृदय में यरूशलेम की मोहर लगा दी थी। उनके हृदय में भी, जिन्होंने यरूशलेम को कभी भी नहीं देखा था, उनके हृदयों में यरूशलेम के प्रति प्रेम भरा हुआ था। ये उनके जीवन का एक भाग था, ये उनके मन में अंकित हो चुका था, अर्थात यरूशलेम के लिए प्रेम और मनोवेग। सच है कि धर्मशास्त्र में यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने की आज्ञा है। फसा के पर्व के समय, चाहे वे संसार में कहीं भी हो, एक बात अवश्य कहते हैं, इस वर्ष यहां, अगले वर्ष यरूशलेम में। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक यहूदी के मन में एक इच्छा और स्वप्न है कि वो यरूशलेम जाए। एक दिन मुझे हमारे एक बहुत अच्छे मित्र डेविड अजियल से पत्र मिला। डेविड को बहुत लोग जानते हैं। वो हमारे साथ यात्रा पर इसराइल गया था और आने वाली गर्मियों की छुट्टी में कैलिफोर्निया आना चाहता था, परंतु नहीं आया क्योंकि वो यरूशलेम में कुछ जमीन खरीद पाए थे कि अपने लिए घर बनाए। और जब उसने लिखना आरंभ किया तब वो रोमांच से भरा हुआ था कि वो यरूशलेम में जमीन का एक टुकड़ा खरीद पाया। उसने आगे लिखा, ये पवित्र सुंदर शहर जिसे परमेश्वर ने चुना। उसने अपने पत्रों में हमें यरूशलेम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। ये सब उनके मन में है, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर ने उनके मन में इसे अंकित किया हुआ है। शहर के बारे में बहुत कुछ है, एक मनोरथा, विशेषता और एक जादूगरी है। जब पहली बार आप उसे देखें, आप अपने आंसू रोक ना पाएंगे। इसमें कोई बात है, ये यरूशलेम है, उसमें एक अनुभव है, उसमें परमेश्वर का कुछ है, परमेश्वर ने कहा, मेरी आंखें सदा यरूशलेम पर लगी रहेगी। नहमाया एक सच्चा भक्त था। उसने यरूशलेम कभी नहीं देखा था, परंतु उसका मन वहां था, उसकी मनोकामना वहां के लिए थी। इसलिए उसने अपने भाई से यरूशलेम का हाल पूछा, उस शहर और लोगों का हाल पूछा। हनानी से उसने एक निराशाजनक हाल सुना। जो लोग बंदवाई से छूटकर वहां रहते थे, वे बड़ी दुर्दशा में थे। उनके शत्रु उनकी निंदा करते थे, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए थे। अध्याय 1:4। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। इससे उसके हृदय को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो एक सच्चा भक्त था। इसलिए यरूशलेम की दुर्दशा के बारे में सुनकर वो रोया और उसने विलाप किया। उसने उपवास के साथ प्रार्थना की। नहमया प्रार्थना करने वाला आदमी था और वो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता रहा। इस पूरी पुस्तक में विशेष अध्ययन का विषय ये है कि नहमया का जीवन प्रार्थना का जीवन था। सदा वो आवश्यक नहीं कि लंबा प्रार्थना की जाए। कभी जीवन की एक क्षण की आत्मा से निकली प्रार्थना सब चीजें स्पष्ट करती है। परमेश्वर का ज्ञान और दर्शन चाहिए। प्रभु मेरी अगुवाई कर, या प्रभु इस समय मेरी मदद कर। सदा अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर को चढ़ाए। ये प्रार्थना अध्याय 1 में दी गई है। अध्याय 1:5। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। यहां अपनी प्रार्थना में वो परमेश्वर की विश्वसनीयता दिखाता है। परमेश्वर, तू वाचा पालता और करुणा करता है और प्रतीति करता है कि यरूशलेम की दुर्दशा और लोगों की गुलामी तेरे वचन का एक हिस्सा थी। वो मान लेता है कि परमेश्वर ने उन्हें सतर्क किया था कि यदि तुम मेरा त्याग करो तो मैं भी तुम्हारा त्याग कर दूंगा। ये चेतावनी उन्हें दी गई थी और अपनी प्रार्थना में परमेश्वर की प्रतीति करता है कि वो विश्वास योग्य है। प्रभु, तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो देश से निकाल दिए जाओगे। वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर बल देता है। परमेश्वर ने फिर ये भी प्रतिज्ञा की, यदि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं फिर तुम्हें इस देश में ले आऊंगा। इसलिए नहमाया परमेश्वर को उसकी उस प्रतिज्ञा को याद दिलाता है जो उसने लोगों से की थी। अध्याय 1:8-9। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाकर वो लोगों को आशीष देने और उनकी ओर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाने की विनती करता है। वो बहुत दिनों के बाद राजा के सामने दाख मधु लेकर गया, क्योंकि नहमाया राजा का प्याऊ था। आपको याद होगा कि कहानी दिसंबर में शुरू हुई और अब अप्रैल है, और वो राजा के सामने प्याला लेकर गया और आज भी वो इसराइलियों की दुर्दशा पर परेशान है और राजा ने उसकी उदासी का कारण पूछा।